क्योंकि अर्थ उस चीज का नाम है जो पर्यायों को इयर्ति प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है, अथवा तैरवा अर्यते उन पर्यायों के द्वारा जाना जाता है, उसको पदार्थ कहते हैं। द्रव्यम उसी का नाम द्रव्य है, तस्मिन इंद्रियई है, तो उसमें जो इंद्रियां होती है उनके द्वारा सन्निकृष्य माने आकृष्ट किए जाने पर या निकटता को प्राप्त होने पर तद द्रव्यतिरेकाद रूपादिष्वपि संव्यवहारो युज्यते, उससे अभिन्न होने के कारण रूप आदि के विषय में संव्यवहार यानी बोलचाल युज्यते जुड़ जाती है। भाषा बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय भाषा है, पर इसको बारंबार स्वाध्याय करते रहने से समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे। यानी सीधी बात, अभी मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, पांच प्रकार के ज्ञानों में से शुरू के दो परोक्ष हैं और बाकी प्रत्यक्ष हैं। फिर मति ज्ञान, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इन सबको एक ही कहा गया है, और वो इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान होता है। अवग्रह, यह अवाय और धारणा उसके भेद होते हैं, और फिर अवग्रह यह अवाय किसके होते हैं तो इन पदार्थों के होते हैं। ये 12 विकल्प बताए, और ये 12 विकल्प किन के होते हैं तो अर्थस्य, इंद्रिय जिसको ग्रहण कर रही है, जो भी पदार्थ चक्षु आदि का, जैसे चक्षु रूप को ग्रहण करता है, रूप यानी रंग, आकार को चक्षु ग्रहण नहीं करता, क्योंकि कई ऐसी आकृतियां हैं जिनमें रूप नहीं है, जैसे हवा है। अब हवा का रूप अपनी चक्षु इंद्रिय का विषय न होने के कारण आंख हवा को देख नहीं सकती। तो इस प्रकार ये इतने विषय बता दिए कि मिमे अवग्रह आदय सर्वस्य इंद्रियान इंद्रियस्य भवति। क्या ये अवग्रह आदि सभी इंद्रियों, पांचों इंद्रियों से होते हैं और मन से भी होते हैं? भवन्ति उत कश्चित् विषय विशेषोस्ति इति अतः, अथवा कोई इसमें विषय संबंधी भेद पड़ता है इति अतः, इसलिए ये सूत्र, ये शंका उठी ना, तो उसके जवाब में सूत्र कहते हैं व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजनम अव्यक्तम, व्यंजन का अर्थ होता है जो अभी प्रकट नहीं है, अप्रकट है। शब्दाधिजातम, शब्दातिक का जो समूह है वो, तस्य अवग्रह भवति न इहादय, उनका अवग्रह तो हो सकता है लेकिन इहा आदि नहीं होते। किमर्थम इदम, ये क्यों कहा, क्यों नहीं होते इहादि? नियमार्थम, ऐसा नियम है। ये सूत्र जो है नियम बतलाने के लिए गया कि व्यंजन जो होता है, व्यंजन यानी अप्रकट, अप्रकट पदार्थ के केवल अवग्रह होता है और उसमें इहा आदि नहीं बनते। अवग्रह एव न इहादयति, सतर्हि एव प्रकार कर्तव्य है। तो फिर ऐसा यहाँ सूत्र में लिख देना चाहिए था कि व्यंजनस्यैव अवग्रह न कर्तव्य है। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, या व्यंजनस्य अवग्रह एव ऐसा करना चाहिए था। तो बोले कि जरूरत नहीं है ऐसा करने की, क्यों? सिद्धे विधि ही आरभ्यमाणो नियमार्थ इति अंतरेणैव कारम नियमार्थो भविष्यति। सिद्ध के संबंध में जो विधि है वो प्रारंभ करने पर नियमार्थ हो जाती है, इसलिए एव के अभाव में भी ये सूत्र नियमार्थक बन जाता है। थोड़ा भाषा जो है शास्त्रीय भाषा, इसलिए घबराना मत। ननु, अब शंकाकार कहता इसमें एव क्यों नहीं लगाया, ये शंकाकार ने शंका की थी। तो आचार्य बोलते हैं कि प्रकरण ऐसा चल रहा है कि एव लगाए बिना भी वो बात सिद्ध हो रही है, इसलिए जबरदस्ती एव लगा करके सूत्र के अक्षरों को क्यों बढ़ाया जाए? अक्षरों को बढ़ाने से ग्रंथ का वजन भारी हो जाएगा, इसलिए अक्षरों की वृद्धि हम नहीं करते। ननु अवग्रह ग्रहणम उभयत्र तुल्यम, बोले कि शंकाकार कह रहा है कि अवग्रह जो है वो तो दोनों तरफ बराबर रूप से ग्रहण किया गया है। तत्र किं कृतोयम विशेष, फिर उनमें किस अपेक्षा से ये भेद पड़ रहा है? तो आचार्य कहते हैं अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह ग्रहयोर व्यक्ता व्यक्त कृतो विशेष, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह इन दो प्रकार के अवग्रहों में व्यक्त और अव्यक्त के द्वारा, प्रकट और अप्रकट के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भेद है। कथम, किस प्रकार? अभिनव शरावार्द्रीकरणवत्, जैसे नया जो शराब यानी सकोरा होता है, एक प्रकार का बर्तन होता है, उसको गीला कर दो तो यथा जलकण जलकण द्वित्रासिक्त, दो तीन बार उसमें पानी के छींटे मारो तो सरावो अभिनवो न आर्द्री भवति, दो तीन बार छींटे मारने से वो गीला नहीं होता, पूरा पानी सोख लेता है वो। नया जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उस पर दो तीन बार ऐसे छींटे मारो तो वो पूरा पानी सोख लेता है। सैव पुनः पुनः सिंचमाना, उसी पर बार बार सिंचन करो तो शनै स्तिम्यति, धीरे धीरे गीला हो जाता है। एवं इसी प्रकार श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु, कर्ण अधिक इंद्रियों में शब्दादि परिणतः पुद्गला, शब्द आदि रूप ध्वनि आदि रूप परिणत होने वाले पुद्गल, द्वित्रादिषु समयेषु गृह्यमाणा, दो तीन अधिक समयों में ग्रहण किए जाने पर न व्यक्ति भवन्ति, प्रकट नहीं होते, अप्रकट रहते कानों में एकदम, जब तक बार बार आवाज ना आए तो फिर वो बात बनती नहीं। अपने को लगता है कि देखो एक सेकंड में मैंने सुन लिया, उस सेकंड एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो कितनी बार वो ध्वनि आई होगी कानों में एक सेकंड के अंदर, तब जाकर के अपन ने पकड़ी है। पुनः पुनः अवग्रह सती व्यक्ति भवंती, बोले कि बार बार अवग्रह होने पर वो बात प्रकट होती है जो कानों में पहुंच रही है। अतः इसलिए व्यक्त ग्रहणात्, व्यक्त ग्रहण के प्राक पहले व्यंजनावग्रह, जो व्यंजनावग्रह होता है अप्रकट अवग्रह होता है, वो व्यक्त ग्रहणम अर्थावग्रह, और व्यक्त ग्रहण जो होता है वो अर्थावग्रह होता है। ततः अव्यक्तावग्रहणा ग्रहणादिहादयो न भवन्ति, इसलिए अव्यक्त जो ग्रहण किया है उसके माध्यम से इहा आदि उत्पन्न नहीं होते। जब तक अवग्रह व्यक्त न होगा तब तक इहा आदि नहीं होंगे। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है कि व्यंजन यानी अप्रकट जो पदार्थ है उसमें इहा आदि नहीं होते, केवल अवग्रह होता है। सर्वेन्द्रियाणाम अविशेषेण व्यंजनावग्रह प्रसंगे, सब इंद्रियों में समान रूप से व्यंजनावग्रह का प्रसंग आ जाएगा अगर ऐसा कहोगे तो। अभी जो सूत्र आया है उसके माध्यम से तो सभी इंद्रियों में ये चीज बन घटित होगी। तो यत्रा संभवस तदर्थ प्रतिषेधम आह, तो जिन इंद्रियों में ये व्यंजन अवग्रह असंभव है उसके लिए आचार्य कहते हैं उसका प्रतिषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए आचार्य कहते हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह न नहीं होता। चक्षुषा अनिंद्रियेण च व्यंजन अवग्रहो न भवति, चक्षु के द्वारा और अनिंद्रिय अर्थात मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह न भवति, नहीं होता। कुत, क्यों नहीं होता? अप्राप्य कारित्वात्, क्योंकि चक्षु और मन जो होते हैं वो पदार्थ को छू करके नहीं जानते, ठीक है ना, प्राप्त करके नहीं जानते। यत अप्राप्तम अर्थम अविदिक्कम युक्तम सन्निकर्ष विषय वस्थितम बाह्य प्रकाशाभिव्यक्त मुपलभते चक्षु मनश्चाप्राप्तम इत्यनयोर व्यंजनावग्रहो नास्ति, क्योंकि अप्राप्त जो पदार्थ होता है वो अविदिक्कम अविदिक्क होता है, युक्तम जुड़ा हुआ, सन्निकर्ष विषय अवस्थितम निकटता के विषय में यानी संपर्क में अवस्थित, बाह्य प्रकाशा की अभिव्यक्ति, बाह्य प्रकाश से अभिव्यक्त जाना जाता है। तो चक्षु और मन अप्राप्त, इस प्रकार इन दोनों में व्यंजन विग्रह नहीं बनता। मतलब ये हुआ कि चक्षु और मन जो होते हैं उस विषय को, इस पदार्थ को प्राप्त करके नहीं जानते, दूर से ही जान लेते हैं। चक्षुषो प्राप्य कार्यत्वम कथम अद्य वसीयते, ये कैसे निश्चित किया जाए कि मन तो ठीक है, मन तो किसी को नहीं छू रहा है और जान रहा है, तो अपने को सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आंखें स्पर्श किए बिना जानती है, इसका निश्चय कैसे करोगे? आगम तो युक्तितश्च, बोले आगम से यानी शास्त्र वचनों से, और युक्तितश्च युक्ति लगा करके भी, आगम तस्तावत, आगम से क्या निर्णय होगा? उठम सुने दि सद्दम अपुठम चेव पस्सदे रूवम गंधम रसम च फासम पुठम अपुठम बियाणादि। स्पर्श किए हुए शब्द को सुनता है और अपुठम रूवम चेव पस्सदे, और बिना स्पर्श किए हुए रूप को ही देखता है। गंध रस और स्पर्श, ये स्पर्श किए हो अथवा अस्पर्श वाले हो, दोनों को जान लेता है। ये तो आगम के वचन हो गए, गाथा हो गई। और युक्तितश्च, अब युक्ति से कैसे सिद्ध करें? तो बोले अप्राप्यकारी चक्षु हूँ स्पृष्टा नवग्रहात्। चक्षु जो है अप्राप्यकारी इसलिए है क्योंकि आँखों को कोई चीज स्पर्श कर जाए तो उसको वो ग्रहण नहीं कर सकती। आँख में अगर कुछ चला जाए तो आँख ये नहीं जान सकती कि वो आँख में गई हुई वस्तु का रंग कौन सा है। आँख से दूर अगर वस्तु होगी तो आंख रंग को जानेगी, लेकिन आंख का स्पर्श हो जाए तो नहीं जान सकती। यदि प्राप्यकारी स्यात्, यदि ऐसा मानो कि वो आंख प्राप्यकारी है, तो त्वग इंद्रियवत स्पर्शन इंद्रिय के समान स्पृष्टन मंजनम गृहणीयात न तो गृहणाती। बोले तो फिर वो आंख में जो काजल या फिर कुछ भी लगा लिया आपने, तो उसको भी आंख को जानना चाहिए, लेकिन आंख में लगे हुए काजल को आंख क्यों नहीं देखती? आया समझ में? आंख नहीं देखती, इससे सिद्ध होता है कि आंख छुई हुई वस्तु को नहीं देख सकती। अतः मनोवत अप्राप्यकारी इत्यवसेयम्, इसलिए आंख भी मन के समान अप्राप्यकारी है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ततश्चक्षुर मनसी, इसलिए चक्षु और मन इन दो को वर्जयित्वा छोड़ करके, शेषाणाम इंद्रियाणाम व्यंजनावग्रह, बाकी इंद्रियों का व्यंजनावग्रह बनता है। तो अभी जो अपन ने गिनती लगाई थी ना, कितने 288 हुए थे, तो अब आँख और मन के, मन को छोड़कर बाकी जो 5 इंद्रिय और बाकी जो 4 इंद्रियां हैं, उन 4 इंद्रिय संबंधी ये 12 व्यंजनावग्रह हो जाएंगे। तो 4 इंद्रिय संबंधी 12 व्यंजनावग्रह कितने हो गए? 48। तो 288 में 48 को जोड़ दो तो 336 ये मत ज्ञान के कुल भेद बन जाते हैं। सर्वेषाम इंद्रियाणाम अर्थावग्रह इति सिद्धम, और अर्थावग्रह तो सभी इंद्रियों के पाया जाता है, ये बात तो सिद्ध हो गई। आह निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षण तो विकल्पतश्च। अब कोई कहते हैं कि ठीक है, मति ज्ञान का निर्देश हो गया, लक्षण भी बतला दिए, विकल्प भी, भेद प्रभेद भी बता दिए, 336 भेद हो गए, तो तदनंतरम उद्दिष्टम यत श्रुतम तस्य इदानीं लक्षणम विकल्पश्च वक्तव्य इति अतः। उसके बाद जो कहा गया श्रुत ज्ञान है, अब उसका लक्षण भी बताना चाहिए और उसके भेद भी बताना चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत जो होता है वो मति ज्ञान के कारण होता है और उसके दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक भेदों वाला है और अंग प्रविष्ट द्वादश भेदम 12 भेदों वाला है, जिसको 12 अंग कहते हैं। बहुत सुंदर इसकी टीका है, इस पर विशेष ध्यान देना है। श्रुत शब्दोयम श्रवण उपादाय व्युत्पादितोपि रूढ़िवशात कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते। श्रुत शब्द जो है यद्यपि सुने हुए यानी श्रवण को लेकर के उत्पन्न होता है। श्रु श्रवणे एक धातु है संस्कृत में, उससे श्रुत शब्द बना है। लेकिन शब्द की उत्पत्ति भले सुनने के रूप में हुई हो, सुनने के अर्थ में हुए हो, लेकिन रूढ़िवशात रूढ़ी के प्रभाव से किसी ज्ञान विशेष में उसकी प्रवृत्ति होती है। श्रुत ज्ञान का मतलब सुनने वाला ज्ञान नहीं है, सुनकर के जाना हुआ पदार्थ नहीं है, किंतु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। यथा जिस प्रकार कुछ लवन कर्म प्रतीय प्रतीत्य व्युत्पादितोपि कुशल शब्दों रूढ़िवशात पर्यवदाते वर्तते। कुश लवन कर्म, कुश लवन का अर्थ होता है कुश एक प्रकार की घास है, कुशा उसका लवन यानी हसिये से जो घास काटते हैं ना वो, तो उस क्रिया को प्रतीत्य अपेक्षित करके व्युत्पादित हुआ है कुशल। कुशल शब्द का अर्थ क्या हो गया? कुशल का अर्थ हो गया कि जो कुश यानी घास और लवन का मतलब उसको काटता हो उसको कुशल कहते हैं। लेकिन तो भी रूढ़िवशात रूढ़ी के प्रभाव से पर्यवदाते वर्तते, जो होशियार होता है उसमें कुशल शब्द का प्रयोग होता है। अगर किसी कुशल व्यक्ति को कहोगे कि घास काटने वाला तो फिर क्या होगा, जबकि शब्द का अर्थ वही होता है। शब्द का अर्थ क्या हुआ? कुशल शब्द का अर्थ होता है वो कुश नाम का जो घास है उसको काटने वाला। लेकिन रूढ़ी के कारण जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार कुशल शब्द का अर्थ होशियार होता है। उसी प्रकार श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ आगम में रूढ़ी के मतलब एक परंपरा के कारण श्रुत ज्ञान का मतलब सुने हुए ज्ञान का नाम नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। कब पुनरसो ज्ञान विशेष इति अतः आहा, वो कौन सा ज्ञान है? तो बोले कि श्रुतम मति पूर्वम इति, मति के कारण उत्पन्न होने वाला कोई ज्ञान होता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति इति पूर्वम, श्रुत का प्रमाणपना जो पूरित कर दे इसलिए उसको पूर्वम निमित्तम कारणम इत्यनर्थांतरम। पूर्व का अर्थ निमित्त होता है, कारण होता है। पूर्व का अर्थ यहां पर पहले मत लेना, भले मति ज्ञान पहले होगा श्रुत के, लेकिन फिर भी यहां पूर्व शब्द का अर्थ पहले नहीं है। श्रुत ज्ञान के पहले होता है मति ज्ञान, ऐसा अर्थ मत निकालना। यहां पूर्व का अर्थ निमित्त अथवा कारण है। मतिर निर्दिष्टम, मति ज्ञान का निर्देश कर चुके हैं, बतला चुके हैं। मति पूर्वमस्य मति पूर्वम, मति है कारण जिसका, उसको मति पूर्व कहा, मति कारणम इत्यर्थ। यदि मति पूर्वम श्रुतम तदपि मत्यात्मक प्राप्नोति, अगर कहते हो कि मति के कारण श्रुत होता है तो फिर वो मति के कारण होने से वो भी मति ज्ञान का ही भेद हो गया, उसको श्रुत कैसे कहोगे आप? कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम, क्योंकि कारण जैसा होता है वैसा ही लोक में कार्य भी देखा गया है। नहीं तद एकांतिकम, आचार्य कहते हैं कि ऐसा एकांत नहीं है। दंडादि कारण एवं घटो न दंडाध्यात्मक, बोले कि दंडे के कारण घड़ा बनता है लेकिन घड़ा दंडे जैसा नहीं होता। क्या दृष्टांत देते हैं, मतलब जवाब किसी को समझाने के लिए। अपिच और भी बतलाते हैं, सति तस्मिन् तदभावात्, वो कार्य हो जाने पर उस कारण का अभाव भी हो जाता है। मतलब श्रुत ज्ञान होगा तो फिर मति ज्ञान नहीं रहेगा उस समय पर्याय में। मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान हुआ है, लेकिन जब श्रुत ज्ञान चलेगा तब मति ज्ञान का अभाव होगा, उपयोग रूप से लब्धि रूप भले रहा है लेकिन उस समय पर्याय श्रुत ज्ञान की रहेगी, मति ज्ञान की नहीं रहेगी। जैसे डंडा घड़ा बनाने में कारण है, लेकिन जब घड़ा बनेगा तब डंडा वहां किनारे पर पड़ा रहेगा, घड़ा अलग बन करके तैयार होगा। सत्यपि मति ज्ञाने, मति ज्ञान होने पर भी बाह्य श्रुत ज्ञान निमित्त सन्निधाने पी, और बाह्य श्रुत ज्ञान के निमित्त रूप सन्निधान होने पर भी प्रबल श्रुत वर्ण उदयस्य श्रुताभावस्य, क्योंकि मति ज्ञान हो जाए तो भी और बाहर से श्रुत ज्ञान के जो निमित्त हैं गुरु आदि शास्त्र आदि उनका सन्निधान मिलने पर भी जिसको प्रबल श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का उदय होता है उसके श्रुताभाव है। श्रुति ज्ञान का अभाव पाया जाता है। सब कुछ मिल रहा है लेकिन ज्ञान हो ही नहीं रहा है, क्यों? आवरण का उदय। श्रुतावरण क्षयोपशम प्रकर्षेतु, और श्रुतावरण के क्षयोपशम का प्रकर्ष होने पर तो सति श्रुति ज्ञानम उत्पद्यते, श्रुति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इति, इसलिए मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम्, मति ज्ञान को निमित्त मात्र जान लेना। आहा, अब कोई कहता है श्रुतम अनादि निधनम इष्यते, श्रुत जो है उसको अनादि निधन कहा गया है, माना जाता है, तस्य मति पूर्वकत्वे तद अभाव। बोले कि अगर ऐसा मानोगे कि मति के कारण श्रुत हुआ तो वह अनादि कहाँ रहा? अनादि वस्तु किसी के कारण थोड़ी होती है, वो तो होती है। आदिमतो अंतवत्वात्, और जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। ततश्च पुरुष कृतत्वाद अप्रमाण प्रामाण्यमिति, इसलिए वो पुरुष की कृति होने के कारण, आत्मा के द्वारा रचित होने के कारण प्रामाणिक नहीं है। ऐसी अगर शंका करो तो आचार्य कहते हैं कि नहीं शुदोष, तुम्हें जो दोष दिख रहा है वैसा है नहीं। द्रव्यादि सामान्य अर्पणात्, द्रव्यार्थिक नय की जो सामान्य विवक्षा है उसकी अपेक्षा से श्रुतम अनादि निधन वैश्यते, श्रुत को अनादि निधन माना गया है। नहीं केनचित पुरुषेण क्वचित कदाचित कथंचित उत्प्रेक्षितमिति, बल यहाँ पर किसी पुरुष के द्वारा किसी स्थान पर किसी समय पर किसी प्रकार से ये बात उत्प्रेक्षित नहीं है। तेषामेव, उन्हीं के विशेष अपेक्षा, विशेष की अपेक्षा से आदिरंतश्च संभवती थी, आदि और अंत भी संभव होते हैं, इसलिए मतिपूर्वमिति उच्यते, इसलिए उसको मतिपूर्व कहा गया है। यथांकुरो बीज पूर्वक, जिस प्रकार अंकुर जो होता है वो बीज के कारण होता है, सच संतान अपेक्षा अनादि निधन थी, और संतति की अपेक्षा से वो अनादि निधन परंपरा चल रही है। अंकुर बीज, बीज अंकुर, अंकुर बीज, बीज अंकुर। नच अपौरुषेयत्वम प्रामाण्य कारणम, और जो पुरुष द्वारा या अर्थात आत्मा के द्वारा रचित नहीं है वही प्रामाणिक है। तो जो आत्मा के द्वारा रचित है वो अप्रामाणिक, और जो आत्मा के द्वारा रचित नहीं है वो प्रामाणिक, ये प्रमाणता में ऐसा कोई हेतु बैठता नहीं है, जमता नहीं है। चौर्याद्युपदेशस्य अस्मर्यमाण कृतकस्य प्रामाण्य प्रसंगात, क्योंकि चोरी का उपदेश किसने दिया सबसे पहले? किसी को उसका नाम याद नहीं है, तो जिसका नाम पता न हो वो चीज़ प्रामाणिक हो जाएगी। अगर तुम ये मानोगे कि जिसका नाम पता अगर हो और फिर वो अगर कोई बात करता है तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मान सकते, और जिसका नाम पता वगैरह कुछ भी न हो उसकी बात प्रामाणिक होती है, तो फिर चोर, सबसे पहले चोरी के उपदेशक का नाम किसी को नहीं पता, वो प्रामाणिक मानना पड़ेगा कि नहीं? तो अनित्यस्य च प्रत्यक्षादेह प्रामाण्य को विरोध, और जो अनित्य है उसका और प्रत्यक्ष अधिक का प्रमाण मानने में क्या विरोध है? आहा, अब कोई कहता है प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्तो, पहले जो सम्यक्त है प्रथम उपशम सम्यक्त, उसकी उत्पत्ति में युगपत ज्ञान परिणामात, एक साथ ज्ञान परिणाम होने के कारण मतिपूर्वकत्वं श्रुतस्य न उत्पद्यते इति। शंकाकार ने शंका की है कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है उसी समय उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, तो फिर जब उसका ज्ञान उसी समय श्रुत ज्ञान बन गया तो फिर मति के कारण श्रुत ज्ञान कहाँ से बनेगा? इसलिए ये कहना गलत है कि मति श्रुत का कारण है। तदयुक्तम, आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो भी उचित नहीं है तुम्हारा प्रश्न, क्यों? सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्, सम्यक्त्व में उसकी अपेक्षा पाई जाती है। आत्मलाभस्तु क्रमवान इति, और श्रुत ज्ञान का जो अस्तित्व है वो क्रम से ही पाया जाता है। मतिपूर्वकत्व व्याघात अभाव, इसलिए मतिपूर्वकपना जो है वो नष्ट नहीं होता। श्रुत ज्ञान जब भी होगा तो फिर मति के कारण ही होगा। आहम मतिपूर्वम श्रुतम इत्येतल लक्षणम अव्यापी, श्रुत पूर्वम अपि श्रुतम इष्यते। अब किसी ने शंका की कि मति के कारण ही श्रुत होता है, ऐसा नियम नहीं है, श्रुत से भी श्रुत हो सकता है। बढ़िया शंका है। तद यथा, वो इस प्रकार है कि शब्द परिणत पुद्गल स्कंधात आहित वर्ण पद वाक्यादि भावात चक्षुरादि विषयाच आद्य श्रुत विषय भावम आपन्नात अव्यभिचारिण कृत संगीतिर जनो घटात जलधारणादि कार्यम। जलधारण आदि के आगे ठीक है, संबंध्यंतरम प्रतिपद्यते। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है क्योंकि श्रुत से भी श्रुत हो सकता है ऐसा कहा गया है। फिर वो दृष्टांत दे रहा है, शंकाकार का दृष्टांत है कि जैसे किसी एक जीव ने वर्ण पद वाक्य आदि रूप से शब्द परिणत पुद्गल स्कंदों को कान द्वारा ग्रहण किया, उसके बाद घटपट विषय श्रुति ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसको घड़े पर्दे आदि को लेकर के उसने श्रुति ज्ञान उत्पन्न कर लिया। यदि उसने घट के कार्यों का संकेत कर रखा है तो उसे उस घट ज्ञान के बाद जल धारण आदि दूसरे कार्यों का ज्ञान हो जाता है और तब श्रुति ज्ञान से श्रुति ज्ञान उत्पन्न होता है। वो दृष्टांत देकर के समझा रहा है कि श्रुति ज्ञान सिर्फ मति ज्ञान से ही नहीं उत्पन्न होता, श्रुति ज्ञान से श्रुति ज्ञान भी होता है। या किसी एक जीव ने चक्षु आदि इंद्रियों के विषय को ग्रहण किया, अनंतर उससे धुएं आदि पदार्थ विषयक प्रथम श्रुति ज्ञान हुआ, यदि उसे धुआं आदि और अग्नि आदि द्रव्य के संबंध का ज्ञान है तो वह धुआं आदि के निमित्त से अग्नि आदि को जान लेता है और तब श्रुति ज्ञान से श्रुति ज्ञान होता है। इसलिए मति पूर्वक श्रुत होता है, यह बात कैसे बनेगी, ये शंका है। तो आचार्य कहते हैं नैष दोष, तुम्हें जो दोष दिखाई दे रहा वैसा दोष नहीं है। तस्यापि मतिपूर्वकत्व उपचारतः, वो श्रुत ज्ञान भी मतिपूर्वक है उपचार की अपेक्षा से। श्रुतमपि क्वचिन मतिरिति उपचर्यते, कहीं कहीं जो जिस श्रुत से दूसरा श्रुत ज्ञान हो रहा है उसको भी मति ज्ञान उपचार से कहा जा सकता है। मति पूर्वकत्वादिति, क्योंकि उसका कारण कौन सा था, मति ज्ञान था, तो मति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उसको भी उपचार से मति कहते हैं। कार्य में कारण का उपचार, ये भी न्याय का विषय है, कार्य में कारण का उपचार करके ऐसा कथन हो सकता है। इसलिए जो सूत्र में वचन आए थे मति पूर्वम, वो बाधा को प्राप्त नहीं होते। देखो सूत्र वचन को सिद्ध करने के लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, कितना विस्तार किया गया है। यानी कोई भी आचार्य, कोई भी टीकाकार सूत्र की पुष्टि में ही अपना पूरा पराक्रम, पूरे पुरुषार्थ को लगा देते हैं, सूत्र से विरुद्ध कुछ भी नहीं कहते, उसके लिए कितने तर्क वितर्क करते हैं, अंत में यही सिद्ध करते हैं कि जो सूत्र लिखा वो सही है। शंकाकार कितनी भी शंकाएं करें, अंत में समाधान उसका यही देते हैं कि जो सूत्र है वो अकाट्य है। भेद शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, भेद शब्द जो दिया है सूत्र में, भेद शब्द कहां दिया है, आखिरी में, श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। ये जो भेद शब्द है उसका प्रत्येकम परिसमाप्यते, सबके साथ उसको परिसमाप्त किया जाता, परिसमाप्त का मतलब उसको प्राप्त करा देना पड़ता है सबके साथ। द्विभेदम अनेक भेदम द्वादश भेदम इति, जितनी संख्याएं दी है ना उनके साथ भेद को जोड़ लेना चाहिए। द्विभेदम तावत, अब दो भेद कौन से हैं, अंग बाह्यम अंग प्रविष्टम इति, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्यम अनेक विधम, अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, कैसा, दश वैकालिक उत्तराध्ययन आदि, दश वैकालिक और उत्तराध्ययन आदि। अंग प्रविष्टम द्वादश विधम, अंग प्रविष्ट दो 12 प्रकार का है। तद यथा, वो इस प्रकार, आचार आचार सूत्रकृतम स्थानम समवाय व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञाति धर्म कथा उपासक अध्ययन अंतकृत दशम अनुत्तरौपपादिक दशम प्रश्न व्याकरणम विपाक सूत्रम दृष्टिवाद इति, 12 नाम दे दिए 12 अंगों के। दृष्टिवाद है पंचविद। दृष्टिवाद के पांच प्रकार हैं, परिकर्म, सूत्र, सूत्रम, प्रथमानुयोग, पूर्वगतम, चूलिका, चेति। ये पांच भेद हो गए। फिर तत्र पूर्वगतम चतुर्दशविदम, पूर्वगत के 14 भेद हैं, उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय, अग्रायणीयम, वीर्यानुप्रवादम, अस्तिनास्ति प्रवादम, ज्ञान प्रवादम, सत्य प्रवादम, आत्म प्रवादम, कर्म प्रवादम, प्रत्याख्यान।